ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षता सिंह से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि पुनरीक्षण में आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करने पर भी विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य में पुनरीक्षण कार्य संविधान के दायरे में है, लेकिन इसके समय पर प्रश्न उठाया है। न्यायालय ने कहा कि ये कार्य बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही क्यों हो रहा है और इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि आयोग को अगर नागरिकता की ही जाँच करनी थी तो उसे ये कार्य पहले करना चाहिए था। संशोधित मतदाता सूची का मसौदा अगस्त में प्रकाशित किया जाएगा। न्यायालय ने आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
इस बीच आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के पृष्ठ 16 के अनुसार पहले से ही आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बिहार में अब तक 5,22,00,000 से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं, जो कुल प्रपत्रों का 66% से ज्यादा है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि गणना प्रपत्र एकत्र करने का काम इस महीने की 25 तारीख की निर्धारित तिथि से पहले ही पूरा हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष इस मामले में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भ्रम फैला रहा है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को 1,066 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार असम के लिए 365 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 29 करोड़, मेघालय के लिए 30 करोड़, मिजोरम के लिए 22 करोड़, केरल के लिए 153 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 455 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध सभी राज्यों की एकजुटता और सुरक्षा बलों की बहादुरी से हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। उन्होंने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में स्थापित और ऊर्जा क्षमता में 4,000% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 227 गीगावाट हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने निर्धारित योगदान को पूरा करने वाला पहला G20 देश बन गया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा को बेहद सफल बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्वीकृति स्थापित की गई।
आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता।
भारत का मछली उत्पादन 11 वर्षों में दोगुना से अधिक होकर 195,00,000 टन हो गया है। ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश की नीली क्रांति की सफलता को दर्शाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत तेज वर्षा जारी रहने की आशंका है। मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत तेज वर्षा होगी। लॉन्डर्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद ओली पोप और जो रूट ने तीसरे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी कर टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।